हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 3 भगवान का उत्तर अर्जुन के प्रश्न के संबंध में। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान यज्ञेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। यानी कि दो प्रकार के लोग हैं, एक अपनी इंद्रियों को खींच लेंगे हर प्रकार के कर्म से और अपने मन को आत्मा के ज्ञान में स्थित करने का प्रयास करेंगे, और दूसरे होंगे जो अपने हर कर्म को भगवान कृष्ण को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग की उच्चतर अवस्था है जिसमें केवल कर्मफल को ही भगवान को समर्पित नहीं किया जाता, बल्कि भगवान के लिए ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य किया जाता है। और प्रभुपाद हमारा ध्यान उच्चतर कर्मयोग की तरफ लेके जाना चाहते हैं, न कि केवल वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करते हुए अपने कर्म फल को भगवान कृष्ण को समर्पित करने के लिए ही। तात्पर्य द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं के चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, यानी कि नेति का अभ्यास करना। ये चीज़ जड़ है, ये चीज़ चेतन है, ये चीज़ जड़ है, ये चीज़ चेतन है, तो जड़ में मैं अपनी बुद्धि को नहीं लगाऊंगा, चेतन वस्तुओं में लगाऊंगा। इस प्रकार के विश्लेषण या एनालिसिस करने में जिनकी रुचि होती है ऐसे लोग सांख्य योग का अवलंबन करते हैं या सहारा लेते हैं या उसमें लगते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है और इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत की और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म विशिष्टता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, हम लोग थोड़ा सा इन श्लोकों को फिर से देखेंगे कि प्रभुपाद जी किन श्लोकों को बोलने का प्रयास इसमें आप बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में, 61 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा देख लिया जाए तो फिर अच्छा से समझ में आएगा। ओके, कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम या युक्त आसीत मत्परः वशै हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि वही व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है और वही व्यक्ति सही प्रकार से अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने के साथ साथ अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा कर रखे, मत्परः तत्परः कृष्णपरः हो जाए। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण वहां पर दिया था। और 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है, तो 39वें श्लोक को देखते हैं क्या है। 39वां श्लोक है, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर् योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। तो भगवान ने यहाँ बताया कि इससे पहले वाले इस वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैंने यहाँ तक समझाया कि किस प्रकार से सांख्य योग के माध्यम से तुम कर्म बंधन को काट सकते हो, और अब मैं बताऊंगा बुद्धि योग या कर्म योग के द्वारा किस प्रकार तुम कर्म बंधन को काट सकते हो। यानी कि कर्म करना की प्रवृत्ति है तुम्हारी और उनको कृष्ण को समर्पित करके किस प्रकार से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, इस चीज को समझाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें भगवान ने बताई हैं। और ये यहाँ पे एक और बात आ रही है कि भगवान पे आश्रित क्यों है, क्योंकि भगवान की ही इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास बुद्धि योग के द्वारा किया जाता है। ये समझते हुए अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय लेते हुए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मुझे उनकी उनकी सेवा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ली जा रही है, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। पहले इसके जो पहली लाइन है उसको चर्चा करेंगे, दर्शन विहीन धर्म, धर्म में धर्म के पालन में कुछ ना कुछ हमारे नियमों का पालन होता है, कहीं पर हम जल चढ़ाते हैं, कहीं धागा बांधते हैं, कहीं बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन अगर दर्शन विहीनता है यानी ये नहीं पता है कि इन क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, तो केवल भावुकता के स्तर पर व्यक्ति इन क्रियाओं का पालन करता है। किसी देवता की पूजा करता है, क्यों? क्योंकि वो उसकी कुल देवी हैं, ये कुल देवता है, इस प्रकार से वो लोग पूजा करते हैं अपने अपने गुण, जो गुण उन्हें अर्जित किए हैं प्रकृति के संघ के द्वारा, वो इस प्रकार से पूजा पाठ में लग जाते हैं। और इसमें साथ साथ ये भी मानते हैं कि सामने वाला जो है, जो दूसरा व्यक्ति है जो इस पूजा को नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति निकृष्ट है, है और उसे घृणा करते हैं, यहाँ तक कि उनको मारने का भी प्रयास करते हैं। तो ये बात समझ नहीं लग पाते हैं लोग कि धर्म का उद्देश्य है भगवान को जानना, जो कि एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं लेकिन व्यक्ति एक ही हैं, और अल्टीमेट पर्पस अंततोगत्वा धर्म का उद्देश्य है उनके चरणों में अहेतुक ही प्रीति उत्पन्न करना, ये धर्म का एसेंस है। ये कोई हिंदू मुसलमान जैसा धर्म का बात नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो भगवान में बिना किसी भौतिक इच्छा के प्रीति उत्पन्न कर दे, अगर उसका नियम का हम पालन कर रहे हैं ठीक से। तो ये बात तो यहाँ पे होगी, अगर हम दार्शनिक चिंतन के द्वारा नहीं समझते हैं तो केवल भावुकता के स्तर पर रहेंगे। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपोह है, यानी दार्शनिक चिंतन तो बहुत कर लिया लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा, भगवान की भक्ति में नहीं लगा, तो केवल दूर दूर से कह सकते हैं ऐसा होगा जैसे कि एक हानि की बोतल, एक शहद की बोतल है, उसका उसने विश्लेषण कर लिया, सारा पढ़ लिया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ढक्कन खोल करके उसको चखने की बजाय खाली बाहर से वो चाटता रहे। तो इसलिए केवल दार्शनिक चिंतन ही में लगा रहे व्यक्ति, इसका अर्थ ये है कि केवल बहुत उसका कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, बौद्धिक एनालिसिस करता रहे लेकिन भगवान की सेवा में ना लगे, तो फिर ये केवल उसी प्रकार से है जैसे शहद की बोतल के ऊपर से चाटना। तो इसीलिए भगवान की भक्ति के साथ साथ भगवान का भक्ति का जो दर्शन है उसको भी सीखना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम भगवद्गीता भी पढ़ते हैं और भगवान नाम की शरण भी लेते हैं। दूसरा बात यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो इस प्रकार से खोज कर रहे हैं कि परम सत्य कौन है और परम सत्य को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, वो कई जन्मों के इस प्रकार की खोज के बाद भगवान को प्राप्त करते हैं, समझते हैं कि भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं और उनके शरण में जाकर उनकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद्गीता में मिलता है, आगे जाके समझाएंगे भगवान। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है, यानी कि अपने को कृष्ण के सेवक या दास के रूप में समझ लेना। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है, यानी दार्शनिक चिंतन के द्वारा व्यक्ति समझता है हाँ मैं शरीर तो हूँ नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ, फिर मेरा उद्देश्य, मेरा स्रोत कौन है, ऐसे करके वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, फिर कई जन्मों के बाद वो समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन भक्ति योग में शास्त्र सुनते हैं, गुरु के मुख से, शास्त्र के मुख से सुन लेते हैं कृष्ण भगवान है, मैं उनका नित्यदास हूँ और उनकी हम सेवा में लग जाते हैं, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है, यानी भक्ति में व्यक्ति को ज्ञान हृदय में से स्वयं उदित होता है, जैसे एक फूल एक कोमल अवस्था से कह सकते हैं क्या बर्ड को बोलते हैं कली, कली से खिल करके फूल बनता है, उसी प्रकार से भक्ति करने से भगवान का जो ज्ञान है वो हृदय में स्वयं उदित होता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवद गीता नहीं पढ़ें, भगवद गीता हम पढ़ेंगे और भगवद गीता पढ़ने से बहुत लाभ है, हमने कल भी चर्चा किया था, लेकिन साथ साथ भगवद गीता के ज्ञान को हृदय में अनुभव करने के लिए व्यक्ति को अब भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा और भगवत कृपा से ही ये ज्ञान उसके हृदय में उदित होगा, ये बात समझने आनी चाहिए। तो इसलिए हमें इस चीज़ के लिए अलग से कोई दार्शनिक चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, भगवद गीता को हम पढ़ें समझें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करके भगवान की सेवा में लगें। भगवान अपने उत्तर को आगे कंटिन्यू करते हैं। श्लोक क्रमांक 4 को देखिए। न कर्मणां मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म से फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा और जब कार्य नहीं करेगा तो उसे कर्म फल से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पूर्वगत जो किए गए कर्म है उसका फल भी उसको भोगना पड़ेगा। और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि हम कोई कार्य ना करें, उसको भगवान अगले श्लोकों में भी चर्चा करेंगे। तात्पर्य को देखिए। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। मतलब कि वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के बारे में प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इन कर्मों का विधान इसलिए है ताकि व्यक्ति का हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो इन आश्रमों के नियमों का पालन करने के द्वारा। तुरंत ही कोई व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मन भोगों में आसक्त है और भोगों में आसक्त होने के कारण संन्यास लेने के बाद भी वो सारी भोग की आदतों को क्रियाओं को बंद नहीं कर पाएगा। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। शुद्धि का अर्थ है ये भोगने की जो लालसा है अगर वो हृदय में है बहुत तीव्र और फिर व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो उसका संन्यास के मार्ग से पतन होना अवश्यंभावी हो जाता है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह इस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बोली है और आप देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद जी कर्मयोग जैसा कि भक्ति योग में किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, थोड़ा उस पर विचार कीजिए। कुछ लोग कहते हैं बस संन्यास ले लो और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार से तुम कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। मुक्त क्या हो जाओगे? तुम भगवान बन जाओगे। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणम भवेत, संन्यास दंड ग्रहण करने मात्र से जो इंसान है वो नारायण बन जाता है, इस प्रकार की धारणा गलत धारणा उनके मन में है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। पहली बात तो ये कि जीव कभी भी नारायण हो नहीं सकता, भगवान बन नहीं सकता। भगवान भगवान है, कोई भगवान बनाया नहीं जाता है, भगवान कोई बनता नहीं है। पहली बात तो हमको ये समझनी है। दूसरी बात यह है कि संन्यास लेने के लिए भी व्यक्ति की हृदय की शुद्धि होनी चाहिए और अगर हृदय की शुद्धि नहीं होती है तो वो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करेगा, यानी कि ढोंगी सन्यासी, डारी सन्यासी, स्त्रियों को रखने वाला सन्यासी बनेगा। इस प्रकार के बहुत सारे सन्यासी कलयुग में हैं और स्पेशली मतलब बंगाल में बहुत इस प्रकार के लोग होते हैं जो सन्यास आश्रम में भी रहते हैं, सो कॉल्ड सन्यास आश्रम में, और उनकी बहुत सारी स्त्रियां भी रखते हैं। तो इस प्रकार का सन्यास आश्रम केवल समाज में उत्पात उत्पन्न करेगा। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और इसके कारण वो कुछ अपने सामाजिक कार्य को नहीं कर पाता है तो भी उसका कोई लाभ उस नुकसान नहीं है। इस बात को श्रीमद् भागवत में बताया गया है त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा वभद्रम अभूदमुष्य किं कोवार्थ आप्तो भजताम सुधर्मतः। बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत का आता है प्रथम स्कंद में कि कोई व्यक्ति अपने सुधर्म को त्याग भी दिया और भावुकता में भी अगर उसने भगवान की भक्ति में आ गया और कुछ समय भक्ति की और क्योंकि भजन में परिपक्व नहीं रहा, इंद्रियों के वेग के द्वारा उसका पतन हो जाता है, तो उसको नुकसान क्या हुआ। और अगर व्यक्ति अपने सुधर्म का पालन करता रहा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करी तो उसका लाभ क्या हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो जो सुधर्म का आचरण भी कर रहा है उसका उद्देश्य उसको पता होना चाहिए, हृदय की शुद्धि और भगवान की प्रसन्नता। तो ये बात अगर उसमें भगवान की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर ये बात धारणा हमारे हृदय में है तो व्यक्ति अपने सुधर्म का पालन करते हुए बहुत जल्दी अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। तो ये चीज़ हमको समझ में आना चाहिए। अब जीवात्मा, ऐसा क्या है जीवात्मा में जिसके कारण वो कार्य करना नहीं रोक सकता, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर्स में। हरे कृष्णा।